AFEIS.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। मित्रों, साथ में ही स्वागत है उन चार स्टूडेंट्स का जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन चार साथियों के नाम हैं शैलेंद्र भार्गव, आप गुना मध्य प्रदेश से हैं, अस्मिता सिंह ग्वालियर से हैं, राघवेंद्र कुमार बेंगलुरु से और दिलीप कुमार चौधरी यमुनानगर से। शैलेंद्र, अस्मिता, राघवेंद्र और दिलीप, आप चारों का मैं एकेडमी फॉर एक्सीलेंस की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने आज की जब मैं डेट बता रहा था तो उसमें मैंने आज के दिन का भी उल्लेख किया, शनिवार, ये जानबूझकर के किया है और मैं समझता हूं कि आप जान गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। आज के इस ऑडियो को सुनने के बाद कल का दिन पूरी तरह से आपके अपने हाथ में होगा, अपने अनुसार होगा, लेकिन पूरी तरह से मुक्ति फिर भी आपको नहीं मिल पाएगी। हालांकि मेरी आवाज के रूप में ऑडियो गाइडेंस आपके साथ नहीं होगा, लेकिन योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स डेफिनेटली आपके साथ होंगे। कुरुक्षेत्र के हिंदी और इंग्लिश के आर्टिकल्स होंगे और योजना के आप हिंदी का आर्टिकल्स होगा, तो प्लीज आप उन आर्टिकल्स को देखें। खासकर ये जो मैं आर्टिकल्स डालता हूं, ये बहुत ही सोच समझ कर डालता हूं। ये आर्टिकल्स वही होते हैं जो सीधे सीधे सिविल सर्विस की परीक्षा में आपके काम आने वाले होते हैं, और भले ही ये यूं कह लीजिए कि सीधे इस पर प्रश्न न पूछा जाए, लेकिन दूसरे पूछे गए प्रश्नों के आप उत्तर दे सकें उसमें ये निश्चित रूप से आपकी मदद करते हैं। मित्रों, इससे पहले कि मैं इसके मोटिवेशन वाले सेक्शन पर आऊं, एक सूचना आप लोगों के लिए और है, और वो ये है कि जो स्टूडेंट पिछले साल के अक्टूबर की क्लासेस में आए थे उनके लिए जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, उनके मेल्स पर भेजे जा रहे हैं ऑडियो गाइडेंस, और मुझे यकीन है कि ये स्टूडेंट्स लगातार उस स्पेशल ऑडियो गाइडेंस को सुन रहे होंगे। और दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि उस स्पेशल ऑडियो गाइडेंस का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके का है, या होता है आप कह लीजिए, और आगे भी होता रहेगा, कि उसे आप एक बार सुनकर खत्म मत समझ लीजिए, उसे बार बार सुनिए। जब भी आप उससे रिलेटेड टॉपिक पर कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते समय आपको वो ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, या उसे आप और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, या उससे रिलेटेड किसी क्वेश्चंस का आप आंसर लिख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप उस ऑडियो गाइडेंस को एक बार फिर से सुने, बहुत ध्यान से सुने, और फिर आगे का अपना काम करें। आप देखेंगे कि किस तरह से वो जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस है लगातार आपको अधिक मजबूत बनाने में और अधिक गहराई तक ले जाने में आपकी मदद करते रहेंगे। ये जरूर है कि वो जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस है बहुत बौद्धिक नहीं है। मैंने जानबूझ करके उसे बौद्धिक नहीं बनाया है, उसे आतंकित करने वाला ऑडियो नहीं बनाया है। जो मेरी दृष्टि है दोस्तों, खासकर इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को लेकर के, वो पूरी तरह से कह लीजिए कि सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट पर टिकी हुई है। सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे लगता है कि ये चीज इस रूप में लाई जानी चाहिए, उसी रूप में मैं उन चीजों को पेश करने की कोशिश करता हूं। इसलिए हो सकता है कि बहुत सी मेरी बातें आप लोगों को सुपरफिशियल लेवल की लगें, इंटरमीडिएट क्लास के स्तर की लगें, या आपको ये भी लगे कि ये तो हमें मालूम ही है। जो भी आपको लगे उसमें मैं कोई न तो एतराज कर रहा हूं और न उसको रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये जरूर विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो मेरी जो गहराई है या जो उसका विस्तार है वो पूरी तरह से सिविल सर्विसेज के फ्रेम के अंतर्गत ही है। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो मुझे लगते हैं कि इंटरमीडिएट तक का ही नॉलेज उसके लिए सफिशियंट है, तो बट नेचुरल है कि मैं उसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या ऑनर्स लेवल का ले जाकर के आपको बेकार के फंसाना या उलझाना नहीं चाहता। इसलिए दोस्तों, आप थोड़ा सा यकीन कर सकते हैं, और इस यकीन को पुख्ता बनाने के लिए यदि आप चाहें तो सिविल सर्विसेज के जो अनसॉल्व पेपर्स हैं, दो साल के आखिर में आपके पास अनसॉल्व पेपर है नए पैटर्न के अनुसार, आप उन पेपर्स को पढ़िए, उनके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए, फिर शायद आपको ये लगने लगेगा कि नहीं, ऑडियो गाइडेंस जिस लेवल को लेकर के चल रहा है वो निश्चित रूप से आपके लिए मददगार हो सकता है। ये बात मैं कतई नहीं कहूंगा कि यही सफिशियंट है, संपूर्ण है, नॉट एट ऑल। ये केवल एक मार्गदर्शक के रूप में है जो आपको हो सकता है कि आपके आगे आगे एक मध्यम टार्च बनकर के चलता रहे और आपको रास्ता दिखाता रहे। चलना तो दोस्तों आपको ही है, छोटा सा काम केवल मैं रास्ता दिखाने का कर रहा हूं, और मुझे बेहद खुशी होगी जब इस मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलकर आप कहीं भी पहुंचेंगे और मुझे एक मेल करके सूचित करेंगे कि सर मैं यहां पहुंच गया हूं। वही सच पूछिए तो आप लोगों के द्वारा दिया गया मुझे अवार्ड होगा, और मेरे लिए यही नोबेल प्राइज होगा, उससे कम नहीं होगा। और अगर मैं भारतीय दर्शन और संस्कृति की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि यही आप लोगों के लिए दी गई मेरे लिए सही और पूरी गुरु दक्षिणा भी होगी। तो मित्रों, अब मैं आता हूं आज के उस फर्स्ट स्टेज पर जो मोटिवेशन का होता है, और लगातार मुझे आप लोगों से फीडबैक मिल रहा है, इसे बंद न किया जाए, और निश्चित रूप से अब मैं इसे बंद नहीं करने जा रहा हूं। और खासकर दोस्तों आपको मालूम है कि कल भोपाल के स्वराज्य भवन में एक मैंने लेक्चर का आयोजन किया था क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी के ऊपर। उसमें मैंने जो हमारे भोपाल के स्टूडेंट हैं जो अक्टूबर की क्लास में जो आए थे, जो मार्च की क्लास में आने वाले हैं, और उनको भी जो अदरवाइज भी जो लेक्चर सुनने में रुचि रखते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उनका स्वागत था। और मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या काफी बड़ी थी। तो आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए, केवल ऑडियो सुनकर आए, और फिर प्रोग्राम को भी आपने बड़े ध्यान से सुना। उसमें भी मित्रों, जब मैं अक्टूबर में आए हुए स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर रहा था तो यही बात उभर कर आई, जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो एक मोटिवेशन को लेकर के आती है। पहले एक जोश होता है, जोश खरोश के साथ हम किसी चीज में लगते हैं, और फिर धीरे 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 वो जोश कमजोर पड़ने लगता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि कोई भी तूफान फिर बाद में धीरे 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 कमजोर होने लगता है। तो इस लिहाज से उनका भी यही कहना था कि इसे बंद न किया जाए। तो निश्चित रूप से अब मैंने फैसला ले लिया है कि जब तक कोई दूसरी विपरीत स्थिति नहीं आती या इसके विरुद्ध बातें सुनने को नहीं मिलती, तब तक मैं इसे जारी रखूंगा। मित्रों, कल का जो प्रोग्राम हुआ था इसका वीडियो अवेलेबल बाद में कराया जाएगा। उसमें जो एक सबसे जो अद्भुत बात मुझे लगी, मैं कहूंगा कि ये थोड़ी सी विचित्र सी भी बात लगी और बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक भी है, जिसकी मैं आपको चर्चा करना चाहूंगा, कि मेरे सामने ही एक स्टूडेंट बैठा हुआ था। उसे देखने के बाद मुझे लगा कि ये चेहरा शायद नया है, और जब मैंने पूछा तो मैं सही निकला, वो चेहरा नया था। और मालूम है कि वो चेहरा किसका था, मैं उसी के बारे में बात करना चाहूंगा, और उसके माध्यम से मैं कुछ और बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। मित्रों, वो एक स्टूडेंट था जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन पूरा किया या शायद वो फाइनल ईयर में है। वो स्टूडेंट बनारस का रहने वाला था, लेकिन अभी वो इलाहाबाद में रहकर अपनी तैयारी कर रहा है। मुझे जो बात बहुत विचित्र लगी और जिसे सुनने के बाद मैं अंदर से हिल गया और डेफिनेटली रोमांचित भी हो उठा और उत्साहित भी, वो ये कि उसने मेरा ऑडियो, परसों का ऑडियो सुना, जिसमें मैंने इस बात की चर्चा की थी कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है और उसमें भोपाल के स्टूडेंट्स को आमंत्रित किया था। उसने वो ऑडियो सुना, उस समय वो इलाहाबाद में था। उस सुनने के तुरंत बाद वो स्टेशन गया और जो भी ट्रेन उसे मिली वो ट्रेन पकड़कर भोपाल आ गया, और पांच बजे से पहले वो स्वराज्य भवन में उपस्थित था। मैंने पूछा कि तुम क्यों आए हो, आखिर में क्या चाहते हो, क्या सोचकर आए हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। बोला कि कुछ नहीं सर, आपका वो प्रोग्राम था और मुझे लगा कि ये एक मौका है जब मैं आपके प्रोग्राम में जीवंत रूप से शामिल हो सकता हूं। भाषा मेरी है, भाव उसके हैं, तो मैं वहां उस प्रोग्राम में शामिल हो सकता हूं, मैं आपको सुन सकता हूं, आपको देख सकता हूं, आपसे मिल सकता हूं, बस मैं इसीलिए आया हुआ हूं। और बाद में चाय पर जब व्यक्तिगत रूप से भी मैंने उससे बात की कि बताओ तुम्हारे लिए और मैं क्या कर सकता हूं, तो उसने कहा कि सर कुछ नहीं, बस मैंने जो मुझे पाना था वो मैंने पा लिया, मैंने आपको सुन लिया और जब उसने ये बताया कि उसने अक्टूबर की क्लास के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो सच पूछे तो मेरे मन का एक जो अपराध बोध मुझे महसूस हो रहा था वो कम हो गया। अपराध बोध मुझे इस बात का था दोस्तों कि इस तरह से एक इलाहाबाद में रहने वाला स्टूडेंट बिना रिजर्वेशन के रात भर सफर करके केवल इस छोटे से प्रोग्राम के लिए आता है, जिसे वो ऑडियो पर रोज सुन भी रहा है और ये प्रोग्राम भी बाद में उसे सुनने को मिल जाएगा, इतना खर्च कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो फिर क्यों इस तरीके से परेशान हो रहा है और वो भी मुझे मिलने के लिए। तो इससे मेरे मन में एक अपराध बोध था जो ये सुनने के बाद कम हो गया कि वो अक्टूबर नवंबर की क्लास में वो आ रहा है, उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। मुझे अच्छा लगा, मैंने फिर से कुछ टिप्स दिए कि अभी तुम्हें किस तरह से तैयारी अपनी करनी चाहिए, फिर जब तुम अक्टूबर नवंबर की क्लासेस में आओगे तो फिर क्या क्या और तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसने ध्यान से सुना और फिर वो एक और भी मेरे जो स्टूडेंट थे, मुस्लिम स्टूडेंट के प्रति भी आभार व्यक्त करूंगा जो अक्टूबर की क्लास में मेरे क्लास में आए थे, उन्होंने उस स्टूडेंट को कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पर चलो, मैं तुमको ये मैटर्स दूंगा और इसके बाद फिर तुम चले जाना। तो ये बिना मेरे आदेश के उसने किया, तो मुझे बहुत शांति मिली कि चलिए मेरे स्टूडेंट्स में इतना सामाजिक दायित्व तो है, इतनी कर्टसी है कि बाहर से आए हुए स्टूडेंट की वो इस तरह से मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। मित्रों, इसके जरिए मैं कहना केवल एक बात आपसे चाहता हूं कि वो जो स्टूडेंट आया है, आप देखिए कि उसके अंदर कितनी जबरदस्त जिज्ञासा है, या उसका भाव क्या है, या उसके विचार क्या है। मित्रों, ये सब आप लोगों के अंदर है, जो भी ऑडियो गाइडेंस सुन रहे हैं आप सबके अंदर वो चीजें होती हैं। मित्रों, सिविल सर्वेंट बनने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो आपको बाहर से कहीं इम्पोर्ट नहीं करनी है, वो आप लोगों के अंदर मौजूद है। अगर मौजूद नहीं होती तो आप इसके बारे में सोचते ही नहीं। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत है उस जिज्ञासा को, उस आग को, जो बनने की आग है, जो भभक रही है, जो धधक रही है, उसको जीवित रखने की, उसे जिंदा रखने की। बुझने न पाए, उस पर राख पड़ने न पाए, उसकी आंच मंद होने न पाए, ये सबसे बड़ी जरूरत होती है दोस्तों। मैं उस स्टूडेंट्स कि उस ताकत को सच पूछे तो सलाम करता हूं। जब आप लोग जब अक्टूबर की क्लास में आएंगे, जो भी स्टूडेंट, मैं बिल्कुल स्टूडेंट से मिलवाऊंगा और स्टेज पर बुला करके उससे उसकी बातें कहलवाऊंगा कि वो जो भावना थी, एक उसके अंदर जो डायनेमिज्म है कि उसने सोचा और चल दिया, कुछ नहीं, कुछ उसे नहीं चाहिए, केवल अपने भावों को एक सहारा चाहिए, अपनी आंखों को एक जीवंत दृश्य चाहिए और चला आया। मतलब मैं समझ सकता हूं कि उसमें वो डायनेमिज्म है, वो गतिशीलता है, वो चीजों को एक्शन में कन्वर्ट करने में टाइम नहीं लगाता। और यही मैं आप लोगों से बार बार करता हूं कि प्लीज जो मैं बताता हूं कन्वर्ट इंटू एक्शन। अगर आप एक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे बहुत मुश्किल है कि चीजें बदलेंगी। फिर तो हम जहां हैं वहीं रहेंगे, चाहे मैं हूं या आप ही क्यों न हो। तो मित्रों, यहां जो एक छोटा सा फार्मूला है जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, क्योंकि समय इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं डिटेल में जाऊं, वो ये है कि हमारे अंदर इमोशंस भी हैं और थॉट्स भी हैं। जब आप इमोशंस की पकड़ में आ जाते हैं तो याद रखिए कि आप कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन जब आप इमोशंस को थॉट में कन्वर्ट कर देते हैं तब आप मजबूत हो जाते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब आप इमोशंस को थॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरे सामने ऐसे भी उदाहरण हैं जो इमोशंस के कारण आए और इमोशंस में ही फंसे रह गए और वो इमोशंस उनको इतना कमजोर बनाता चला गया कि मुझे देखकर दुख होता है, सुनकर तकलीफ होती है। तो यू विल हैव टू कन्वर्ट योर इमोशंस इनटू थॉट, और जैसे ही आप इमोशंस को थॉट में कन्वर्ट कर देते हैं वो जो इमोशन है एनर्जी बन जाती है। और दोस्तों, इमोशंस की जो एनर्जी होती है, याद रखिए, वो थॉट्स की एनर्जी से भी ज्यादा ताकतवर होती है। अभी मैं अपनी बात यहीं तक सीमित रखूंगा, और ये जो मैं बात कह रहा हूं मित्रों, इसे आप अपने जीवन भर के लिए नोट कर लीजिए कि इमोशंस जिसके तहत वो स्टूडेंट चलकर आया था, बहुत बड़ा वरदान है हम सबके लिए। अगर हम इमोशंस लेस हो जाएंगे तो हम मशीन हो जाएंगे, बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन इस वरदान को संभाल कर रखने के लिए, इस वरदान को कल्प वृक्ष में تبدیل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جیسے فائر آگ کو آپ یدی مریادہ میں نہیں رکھیں گے تو وہ سب کچھ بھسم کر دے گی، اگر ایموشنز کو آپ مریادہ میں نہیں رکھیں گے تو وہ باڑھ بن کر سب کچھ تہس نہس کر دے گی. کنورٹ اٹ انٹو یور تھاٹس، اسے آپ اپنے وچاروں میں بدلیں، کیونکہ جیسے ہی وچاروں میں بدلیں گے آپ ایکشن میں آ جائیں گے جو اس لڑکے میں مجھے دکھائی دی. یہی اپیکشا میں اپنے سارے پریے اسٹوڈینٹس سے کروں گا، کیونکہ تبھی مجھے ایک وہ دن دیکھنے کو ملے گا جب روزانہ میرے پاس اس بات کے میل آنے شروع ہو جائیں گے کہ سر میرا وہاں سلیکشن ہو گیا ہے. اور دوستوں میں اس دن کی بڑی بےقراری کے ساتھ پرتیکشا کر رہا ہوں، مجھ میں دھیرے ہے، مجھے وشواس ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میری یہ جو سوچ ہے، میرا جو یہ سپنا ہے، لگاتار روزانہ آپ لوگوں کے مادھیم سے پورا ہوتا رہے گا. تو دوستوں آج کے موٹیویشن والے پارٹ میں بس اتنا ہی. اب میں آتا ہوں کل کے اے آئی آر نیوز پر. پہلے میں آپ کو کچھ نیوز کے آئٹمس بتا دیتا ہوں جو آپ کے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کی درشٹی سے امپورٹنٹ ہیں. جو ایک خبر تھی دوستوں بہار میں، اب جو راجنیتک اتل پتھل کی جو استھتی بن رہی ہے اس کے بارے میں آپ نے خبر سنی. دوسری جو نیوز تھی جس کی چرچا میں نے کل تھوڑی سی کی بھی تھی، آج کل کے اپنے آڈیو میں کی تھی اور کل کے رات کے نیوز میں آئی، کہ کس طرح سے امریکہ کے راشٹرپتی اوباما جی نے بھارت کی دھارمک سہشنتا پر ایک ٹپڑی کی ہے. یہ دوسری خبر تھی. تیسری خبر تھی جو بہت امپورٹنٹ خبر تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر سول سروس میں تو اس طرح کے پرشن اب نہیں پوچھے جاتے ہیں، لیکن جو دوسرے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور جو مہاراشٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور یہ اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 50वां جو گیان پیٹھ پرسکار ہے وہ مراٹھی کے ساہتیکار بھال چندر نماڈے جی کو دیا گیا ہے. اور یہ خبر اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے متروں، کیونکہ یہ 50वां پرسکار ہے. تو پہلا، 50वां، 100वां، یہ ایک طرح سے آنکڑوں کی درشٹی سے بڑے مہتوپورن مانے جاتے ہیں. تو چونکہ 50th ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو گیان پیٹھ پرسکار ہوتا ہے یہ ابھی تک کا ساہتیہ میں دیے جانے والا بھارت کا ایک بہت ہی سمانت پرسکار ہے. بہت کم ایسے موقع آئے ہیں جب گیان پیٹھ پرسکار کو لے کر کے وواد اٹھے ہوں. جن کو بھی دیے گئے ہیں وہ اپنے بہت اسٹیچر کے رہے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ اسی دوران دوسرے بھی اسی کے سامانانتر یا تھوڑے سے ادھک تھوڑے سے کم اسٹیچر کے بھی ساہتیکار موجود تھے جن کو اس سال نہیں مل پایا یا آگے پیچھے بھی نہیں مل پایا، لیکن جنہیں ملا ہے کم سے کم ان کے اسٹیچر کے بارے میں تو شاید کبھی کچھ اس طرح کا سوال نہیں اٹھایا جاتا ہے. تو یہ گیان پیٹھ پرسکار کی خبر تھی. ایک متر جو کئی دنوں سے نیوز میں لگاتار بات چلتی آ رہی ہے جس کا الیکھ میں نے ابھی تک نہیں کیا تھا لیکن آج میں کر رہا ہوں، وہ ہے کہ کیرل میں ہمارے نیشنل گیمز ہو رہے ہیں. آپ روز سن رہے ہیں، کھلاڑیوں کے نام سن رہے ہیں، کس کس اسپورٹس میں کون کون کھلاڑی آگے چل رہا ہے، کون جیت رہا ہے. لیڈ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرمی ٹاپ پر ہے اور اسٹیٹس میں ہریانہ سیکنڈ پوزیشن پر بنی ہوئی ہے. تو یہ کیرل آپ کے دماغ میں رہنی چاہیے، اور پھر جب نیشنل اسپورٹس میٹ جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تب یدی کچھ مہتوپورن بات رہی تو اس پر ہم لوگ چرچا کریں گے. اس کے بعد امتر جو ایک اور خبر تھی وہ نیتی آیوگ کی بیٹھک ہوئی، اور نیتی کی آیوگ کی بیٹھک میں کیا کیا باتیں کہی گئی، اب ان کو لے کر کے میں کچھ ایشوز پر آپ سے باتیں کرنا چاہوں گا. متروں سب سے پہلے میں لیتا ہوں بہار کی راجنیتک استھتی پر، کیونکہ جو پالیٹی والا جو حصہ ہوتا ہے، چاہے آپ اس میں کانسٹیٹیوشن کو شامل کر لیں، چاہے پولیٹیکل سائنس کو شامل کر لیں، چاہے پالیٹی سینیریو کو لے لیں یا انٹرنیشنل افیئر کو لے لیں، یہ سب کے سب پالیٹی کے حصے ہوتے ہیں. بہت بڑا کمپوننٹ آپ کے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کا ہوتا ہے، پری میں بھی، مینس میں بھی، ایسے رائٹنگ میں بھی، اور یہاں تک کہ انٹرویو میں بھی. اسی لیے پالیٹی کو آپ چاہے پسند کریں یا نہ کریں لیکن اگنور نہیں کر سکتے. متروں بہار کی جو اب راجنیتک استھتی ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ دور میں پہنچ گئی ہے. اب اس کا حل کیا نکلے گا ایشور جانے. انٹرسٹنگ دور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا راجنیتک دوند اس سے پہلے کبھی بھی کسی راجیہ میں اپستھت ہوا ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہ دوند کیا ہے، میں آپ کو کانسٹیٹیوشنل فریم میں بتا رہا ہوں. نتیش کمار جی پہلے وہاں کے مکھیہ منتری تھے، اپنے دم پر انہوں نے سرکار بنائی، بعد میں बीजेपी ने जब समर्थन वापस ले लिया तो उन्होंने फिर लालू प्रसाद जी के एमएलए के समर्थन से सरकार बनाई और फिर कुछ समय के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर के जीतन मांझी जी को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया। ये इसका बैकग्राउंड है, राइट। अब जब जीतन मांझी मुख्यमंत्री बन गए तो उस समय ये बात चलने लगी कि वो एक तरह से रिमोट कंट्रोल से सत्ता चलाएंगे, यानी कि वो नीतीश कुमार जी के सबसे विश्वसनीय लोगों में थे। और अब हालांकि ठीक है मुख्यमंत्री मांझी जी हैं, लेकिन जो नीतीश जी चाहेंगे वही वे करेंगे। समय गुजरता गया, इसके बाद आप देख रहे हैं कि एक राजनीतिक परिवर्तन आया और जिसमें यह हुआ कि नीतीश कुमार जी की पार्टी और लालू यादव जी की पार्टी में समझौता होने लगा। वहां जो उपचुनाव हुए, दोनों ने मिलकर उपचुनाव लड़े, उसमें उनको काफी हद तक सफलता मिली। फिर यह होने लगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को चूंकि रोकना चाहते हैं तो हम एक राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से एक दूसरे का विलय करेंगे, जिसमें समाजवादी पार्टी तक भी जोड़ने की बात होने लगी। तो ये सारे एक पृष्ठभूमि है। इसके बाद एक स्थिति ऐसी आई कि जीतन मांझी राम जी कुछ इस तरह के बयान देने लगे, विवाद पैदा होने लगे, दूसरी बातें होने लगी, तो एक अब लगने लगा कि नहीं, अब नीतीश जी को ही फिर से मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। और ये सूचनाएं आने लगी अखबारों में कि अब मांझी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना है, राइट। अब देखिए कि अब द्वंद कहां पैदा हुआ। द्वंद पैदा यहां हो रहा है कि मांझी जी अब अपने आप को बिल्कुल इंडिपेंडेंट मान करके और नीतीश कुमार जी के बिल्कुल खिलाफ खड़े से दिखाई दे रहे हैं। बैठक बुलाई गई है, इधर नीतीश कुमार जी जो शरद यादव हैं इन्हीं पार्टी के हैं, इन्होंने एक अलग बैठक बुलाई है। मांझी राम जी ने उस बैठक को बिल्कुल अवैधानिक करार देते हुए अपने लोगों की बैठक अलग बुलाई है। उन्होंने अपने दो मंत्रियों को का इस्तीफा लेने के लिए राज्यपाल जी को लिख दिया है। ये सारे के सारे संकट खड़े हो गए हैं। तो मित्रों, अब इसको हम एक संवैधानिक फ्रेम में लेते हैं, ये एक घटनाएं हैं और इसी तरह से आपको तैयारी भी करनी चाहिए। ये तो घटनाएं हैं जिसकी मैंने चर्चा की, और अगर आप लगातार न्यूज सुन रहे होंगे, अखबार पढ़ रहे होंगे, तो इन घटनाओं से आप वाकिफ हैं। लेकिन जब तक आप इन घटनाओं को फिर से याद नहीं करेंगे तब तक आप फ्रेम नहीं बना सकेंगे। इस पृष्ठभूमि में, इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में फ्रेम क्या बनता है कि एक डेमोक्रेसी में दो पैरेलल सत्ताएं काम करती हैं। डेमोक्रेसी में दो समानांतर सत्ताएं काम करती हैं। एक सत्ता होती है पार्टी की, जो पार्टी सत्ता में होती है, राइट। जैसे अभी केंद्र की बात लें तो एक है भारतीय जनता पार्टी, ये एक सत्ता है। दूसरी सत्ता होती है डायरेक्ट जो काम कर रहे हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं और जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट में हैं, जो मंत्रिपरिषद में हैं, राइट। जैसे नरेंद्र मोदी जी और उनका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल एक सेकेंड सत्ता में है, एक समानांतर सत्ता। तो दो सत्ताएं हो गई, एक राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है और दूसरी राजनीतिक पार्टी के वे व्यक्ति जो चुनकर आए हैं, जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो शरद यादव और नीतीश कुमार जो अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि ठीक है कि नीतीश कुमार जी अपने आप में एमएलए भी हैं, लेकिन वो अभी राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। और मांझी जो हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो एक तरह से सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब सवाल यह आएगा राज्यपाल के सामने, या कह लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि इसमें किसकी बात मानी जाए। मान लीजिए कि जीतन मांझी राम कहते हैं कि असेंबली भंग कर दी जाए, लेकिन पार्टी कहती है राज्यपाल को पत्र लिखकर के कि असेंबली भंग न की जाए क्योंकि बहुमत है और ये सरकार बनाने को तैयार है, हम सरकार बना करके दिखाते हैं, तो क्या होगा, कैसे होगा, राज्यपाल कैसे निर्णय लेते हैं। तो विद इन द टू, एक तरह से पैरेलल आप कह लीजिए कि पावर, दो समानांतर पावर हैं, सत्ताएं हैं, लेकिन हैं एक ही क्योंकि पार्टी चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतने के बाद फिर वो सरकार बनाती है, तो होती तो वो भी पार्टी के ही पार्टी के लोग हैं। तो अब राजनीतिक पार्टी और संवैधानिक सरकार, ये दो के बीच आपको द्वंद दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है मित्रों कि हो सकता है कि आगे चलकर आपके सिविल सर्विसेज में इस घटना को लेकर कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब देखते हैं कि क्या निर्णय लिया जाता है, और डेफिनेटली इस पर जो निर्णय लिए जाएंगे आप देखेंगे कि उस पर खूब जबरदस्त बहस होगी, आर्टिकल्स आएंगे, एडिटोरियल आएंगे, आपको ये चीजें सामने दिखाई देंगी। तो आपको इस घटना पर बकायदे ध्यान देना चाहिए, निगाह रखनी चाहिए। मित्रों, अब मैं आता हूं कल के न्यूज के एक सेकेंड पार्ट पर कि आपकी तैयारी जो सिविल सर्विस की होती है और स्पेशली जो जनरल स्टडीज की होती है, क्या असीमित है, अनंत है, उसका कोई सिलेबस नहीं है? जो कुछ भी मिलेगा आपको वो पढ़ लेना चाहिए, सब कुछ पढ़ लेना चाहिए, या कि इसकी भी सीमा है, इसकी भी मर्यादाएं हैं, इसका भी फिक्स सिलेबस है और आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे यही पढ़ना चाहिए और इस पर अच्छी तैयारी करनी चाहिए? मुझे लगता है मित्रों कि इसकी भी सीमा है, क्योंकि जो यूपीएससी है, जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, उनको जो स्टूडेंट है जो 21-22 साल की उम्र में अपीयर हो रहा है, उसकी जो लिमिटेशंस है उसको मालूम है, उसकी क्षमताएं मालूम है। तो ये कभी नहीं कहेंगे कि साहब असीमित जैसी कोई चीज होती है। सवाल केवल यह है कि क्या आप जानते हैं कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो सिविल सर्विस के लिए जरूरी है। इंपॉर्टेंट की बात में केवल वैसी बात नहीं कर रहा हूं कि जो चीज अगर सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो देश के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, समाज के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट एट ऑल। मैं सिविल सर्विस की बात कर रहा हूं। तो उसमें आप देखेंगे कि कल जो नीति आयोग की जो बैठक हुई है उस पर खबर थी, और उसमें जो इश्यू उठाए गए हैं, जो न्यूज में आए हैं, जिन पर ज्यादा पूछा गया है, जिन पर ज्यादा बहस हुई है या आगे और एडवाइस के लिए कहा गया है, बट नेचुरली कि सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर आपको तैयारी करनी चाहिए, उनकी बहुत बेसिक्स चीजें आपको जान लेनी चाहिए और इसके बाद फिर उन पर अपना बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के आधार पर स्थापित किए गए निष्कर्ष निकाल लेने चाहिए, आपको अपने विचार बना लेने चाहिए। अब आप देखिए कि न्यूज में कौन कौन सी चीजें आई थी। स्वच्छता अभियान के बारे में आया कि भारत में जो स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है, जनधन योजना के बारे में पूछा गया, बात हुई कि जनधन योजना पर जो ये सब खाते खुले हैं, इसके बाद फिर वो जो ट्रांसफर जो सब्सिडी दी जाती है उसको कैसे उनके खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि सब्सिडी का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब वो खाते में ट्रांसफर होने लगेगा पैसा तो वो जितने भी फेक फायदा लेने वाले लोग हैं, जो झूठे और गलत तरीके से फायदे ले रहे हैं, वो सबके सब अलग हो जाएंगे, तो उसका कैसे अंतरण किया जाए, ट्रांसफर किया जाए, इस पर बात हुई। गरीबी के बारे में क्या योजनाएं बनाई जाए, कृषि को कैसे और अधिक विकसित किया जाए, कैसे कृषि की वृद्धि दर को बढ़ाया जाए हमारे जीडीपी में, इस पर बात हुई, और कैसे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाया जाए, इन पर बात हुई। तो मित्रों, अभी मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, क्या आपको कोई भी पॉइंट्स लेस इंपॉर्टेंट लगता है कि नहीं ये जरा सा यार कम महत्व का है, या कोई भी ऐसा पॉइंट लग रहा है जिसके बारे में आप कुछ भी न जानते हो या बिल्कुल नया लग रहा हो? ऐसा नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जानने के साथ साथ आप इस बात को मानते हैं कि नहीं कि ये सिविल सर्विस के लिए तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू हैं, और इन पर आपको बहुत अच्छी और बहुत ही लॉजिकल तैयारी करनी चाहिए। लॉजिकल तैयारी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि वहां इमोशंस काम नहीं आएंगे, और जब हम सुपरफिशियल लेवल पर लिखने लगते हैं तो वहां हम इमोशंस के ग्रिप में होते हैं, राइट? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आपको बहुत अच्छी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो मित्रों, कल के एआईआर न्यूज के बारे में इतना ही। अब कुछ अखबारों की क्लिपिंग्स हैं, अखबारों की क्लिपिंग्स के नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि कौन कौन से क्लिपिंग्स मैं डाल रहा हूं, कुछ क्लिपिंग्स हैं अंडरलाइन किए हुए हैं, नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल रहेंगे, इन्हें आप पढ़ लेंगे। मित्रों, अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर जो ईमेल का चरण है। बहुत से ईमेल आए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबके प्रति बहुत बहुत आभार, और इनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं जिन्होंने मेल लिखे हैं। एच एन सिंह सहारनपुर से, रुद्र मेहरा जबलपुर से, उरूज भारती, वेद व्यास काल सीकर राजस्थान से, जसबिंदर चौहान लखनऊ से, प्रेरणा सोनी जगदलपुर से, और प्रियंका रावत गाजियाबाद से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे पास तीन मित्रों के नाम हैं जो मार्च की क्लासेस में आने वाले हैं और इन्होंने अपने अपने मोबाइल नंबर दिए हैं और कहा है कि जो भी स्टूडेंट्स इनसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं उनके अपने क्षेत्र के स्टूडेंट वो उनसे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों स्टूडेंट्स के मैं नाम ले रहा हूं और मोबाइल नंबर मैं केवल एक बार ही बताऊंगा। कुछ मेरे पास मेल्स आए थे जिसमें उन्होंने कहा कि सर आप केवल एक बार बोले तो बड़े आराम से चल जाएगा, अगर किसी को जरूरत होगी तो फिर से रिबाउंड करके वो उसको सुन लेगा। तो पहला है मिस्टर दोस्तों नाम है नेहा का जो वाराणसी से आ रही हैं। इनका मोबाइल नंबर है 8953840304। दूसरे स्टूडेंट हैं रंजीव कुमार सिंह जो चंडीगढ़ से आ रहे हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9915449554। और तीसरे स्टूडेंट हैं दुर्गेश सोनी बीकानेर से आ रही हैं और इन्होंने लिखा है कि जो लड़कियां इनसे कांटेक्ट करना चाह रही हैं बीकानेर से आने वाली वो उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। दुर्गेश सोनी का नंबर है 8902660333। तो मित्रों इसी के साथ ही ये आज का ऑडियो गाइडेंस पूरा होता है। कल रविवार का दिन है, रविवार के दिन को आप अपने ढंग से इस्तेमाल कीजिए, अपने बचे खुचे कामों को पूरा कीजिए ताकि आने वाले छह दिनों को आप पूरा समय दे सकें। सोमवार को आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।